आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 लोकसभा में हुआ प्रस्तुत। उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वतंत्र और स्वशासी बनाना है विधेयक का उद्देश्य। अयोध्या में टाटा समूह का नमो कैंसर फाउंडेशन स्थापित करेगा आधुनिक कैंसर चिकित्सालय हब। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट करेगा सहयोग। प्रदेश के अधिकांश जिलों में बढ़ती ठंड और कोहरे के चलते जनजीवन हुआ प्रभावित। नोएडा में 15 फरवरी तक लागू की गई नई स्पीड लिमिट्स। और बस्ती जिले के बस्ती लुम्बिनी मार्ग पर यात्रियों से भरी एक बस ट्रक से टकराई, 3 की मौत, दर्जनों घायल। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में कल विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 पेश किया गया। इसे संसद की संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. धर्मेंद्र प्रधान ने विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों को स्वतंत्र और स्वशासी संस्थान बनने में सुविधा प्रदान करना है।
इस विधेयक का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों को स्वतंत्र स्वशासी संस्थान बनाने में सुविधा देने और उत्कृष्टता सुदृढ़ तथा पारदर्शी प्रणाली को बढ़ावा देना है।
विपक्षी दलों ने सदन में विधेयक का विरोध किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कार्य सलाहकार समिति की बैठक में कई सांसदों ने विधेयक पर व्यापक विचार विमर्श पर जोर दिया। अयोध्या में टाटा समूह का नमो कैंसर फाउंडेशन एक आधुनिक कैंसर चिकित्सालय हब स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। इस सिलसिले में टाटा समूह के 6 सदस्य प्रतिनिधिमंडल ने अयोध्या पहुंचकर विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया और संभावनाएं परखी। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इस सिलसिले में नमो फाउंडेशन की मदद करेगा। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट राम मंदिर निर्माण के साथ साथ श्रद्धालुओं को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। श्री मिश्र ने बताया कि कैंसर अस्पताल हब बनाने के लिए जमीन की तलाश शुरू कर दी गई है।
सूर्य कुंड के पास उसका जो नामकरण समझे या क्लासिफिकेशन वर्गीकरण जो है वो कृषि भूमि है, तो सरकार से भी इसके बारे में प्रयास करना होगा कि क्या हम उसको इस सुविधा के लिए उसका नामांतरण बदल सकते हैं या इस्तेमाल उपयोग बदल सकते हैं।
केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मनोहर नायडू ने कहा है कि सरकार हवाई किरायों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए टैरिफ निगरानी इकाई को और मजबूत करेगी। राज्यसभा में कल प्रश्नकाल के दौरान श्री नायडू ने बताया कि घरेलू मार्गों के साथ अब अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के किराए की भी निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि किरायों में बढ़ोतरी को लेकर सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। नवीन पार्टी के इतिहास में सबसे युवा कार्यकारी अध्यक्ष हैं और बिहार से इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले भाजपा नेता हैं। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने पर भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा पूर्व भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें बधाई दी। प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण SIR का क्रम जारी है। राज्य के सभी जिलों में SIR अभियान को पूरा करने के लिए BLO, BLA और राजनीतिक दल के एजेंट्स सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में अमरोहा में कल सभी बूथ लेवल अधिकारियों और राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त एजेंट्स के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने कहा है कि शुद्ध मतदाता सूची तैयार कराना सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से इस अभियान में सक्रिय सहयोग का आह्वान किया है।
आयोग के निर्देश के क्रम में जनपद अमरोहा में SIR का जो पब्लिकेशन हुआ उसकी डेट 26 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दी गई है। कोई भी व्यक्ति अभी भी अगर छूटा हो, अपना फॉर्म नहीं जमा कराया हो, तत्काल अपने BLO से संपर्क करे और फॉर्म जो है वो हार्ड कॉपी में भी दे सकता है या ऑनलाइन माध्यम से भी वो जमा कर सकते हैं। एक बैठक 17 तारीख को आयोजित की जाएगी जिसमें BLA भी अपना फीडबैक दे सकते हैं और अगर कोई भी व्यक्ति छूटा हुआ है और उसका फॉर्म भरा नहीं है उस फॉर्म को भी वो BLO को उपलब्ध करा सकते हैं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में ठंड और कोहरे का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। रात से लेकर सुबह तक पड़ने वाले कोहरे से कई जिलों में लोगों का जीवन प्रभावित होने लगा है। बीते कुछ दिनों में तराई वाले जिलों के तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। गौतम बुद्ध नगर में सुबह घने कोहरे के मद्देनजर यातायात पुलिस ने 15 फरवरी तक नई स्पीड लिमिट्स लागू कर दी हैं। कई जिलों में ठंड को देखते हुए स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में गिरावट होने और कोहरा पड़ने का सिलसिला अगले 3-4 दिन तक जारी रहेगा। दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में तेजी से ठंड बढ़ने का पूर्वानुमान है। काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण के तहत तमिलनाडु का आध्यात्मिक समूह कल बनारस पहुंचा। इस दौरान दल के सदस्यों ने पवित्र गंगा नदी में स्नान करके हनुमान घाट स्थित प्राचीन मंदिरों में दर्शन पूजन किया। दल को प्राचीन मंदिरों के इतिहास के बारे में जानकारी दी गई। बाद में ये समूह सुब्रमण्यम भारती के घर गया, जहां उनके परिजनों से मुलाकात की और पुस्तकालय भी देखा। कांची मठ के भ्रमण के दौरान दक्षिण भारतीय मंदिर को देखकर ये दल खासा उत्साहित दिखा। काशी तमिल संस्कृति का जिक्र करते हुए आध्यात्मिक समूह ने कहा कि इस तरह के आयोजन लगातार होने चाहिए, ताकि एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया जा सके। कल शाम को काशी तमिल संगमम के अंतर्गत नमो घाट पर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज, दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र तंजावुर और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से समा बांध दिया। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने निजी हज यात्रियों को सलाह दी है कि वो 2026 में हज पर जाने के लिए जल्दी आवेदन करें। इसके लिए सिर्फ अधिकृत हज समूह आयोजकों का ही चयन करें। मंत्रालय ने सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय द्वारा हज 2026 के संबंध में जारी परामर्श के मद्देनजर लोगों को निर्देश दिया है कि अगले महीने की 15 तारीख या उससे पहले अपनी बुकिंग संबंधी औपचारिकताएं जरूर पूरी कर लें। राम मंदिर आंदोलन के सूत्रधार और पूर्व सांसद डॉ. रामविलास दास वेदांती का कल मध्य प्रदेश के रीवा में निधन हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर शोक जताते हुए कहा है कि डॉक्टर वेदांती का निधन आध्यात्मिक जगत और सनातन संस्कृति के लिए अपूरणीय क्षति है। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने डॉक्टर वेदांती के निधन पर दुख जताते हुए उन्हें धार्मिक और राजनीतिक जीवन में शुचिता का प्रतीक बताया है।
वेदांती जी का पूरा जीवन सनातन संस्कृति को समर्पित रहा है। उन्होंने देश और प्रदेश की सेवा भी की है, लोकसभा में लंबे समय तक रहे हैं। शुचिता पारदर्शिता पूर्ण जन सेवा उनका ध्येय था और उन्होंने हमेशा जमीन से जुड़ करके गरीबों की मदद के लिए हमेशा वो खड़े रहे। मैं उनके दुखी परिजनों को दुख की घड़ी में हम सब लोग उनके साथ हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने सिर चरणों में स्थान दें।
बस्ती जिले के बस्ती लुम्बिनी मार्ग पर हरदिया चौराहे के पास कल देर रात एक ट्रक और यात्रियों से भरी बस की आमने सामने की टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में 3 व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया। वहां के पुलिस उप महानिरीक्षक संजीव त्यागी ने बताया कि सभी बस सवार संत कबीर नगर के बेलहर कला से अजमेर शरीफ जा रहे थे। बस में कुल 60 यात्री सवार थे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रहे T20 मैचों की सीरीज का चौथा क्रिकेट मैच कल लखनऊ में खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन UPCA से मिली जानकारी के अनुसार इस मुकाबले के लिए दोनों टीमें कल पहुंच गईं। आज दोनों टीमें मुकाबले के लिए पूर्वाभ्यास करेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 लोकसभा में हुआ प्रस्तुत। उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वतंत्र और स्वशासी बनाना है विधेयक का उद्देश्य। अयोध्या में टाटा समूह का नमो कैंसर फाउंडेशन स्थापित करेगा आधुनिक कैंसर चिकित्सालय हब। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट करेगा सहयोग। प्रदेश के अधिकांश जिलों में बढ़ती ठंड और कोहरे के चलते जनजीवन हुआ प्रभावित। नोएडा में 15 फरवरी तक लागू की गई नई स्पीड लिमिट्स। और बस्ती जिले के बस्ती लुम्बिनी मार्ग पर यात्रियों से भरी एक बस ट्रक से टकराई, 3 की मौत, दर्जनों घायल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार रब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।